Hare Krishna.
Hare Krishna.
Nama Om Vishnu Padaya Krishna Krishnaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Namaste. Namaste Charashita Devi Gauravani Pachari Devi Vishishya Srinivasan Pachari Vishkari Srila Prabhupada Hare Krishna.
Hare Krishna.
कल रात को जब मैं आया था वहां कौन कौन थे आप? अच्छा, कौन नहीं थे? ओ अच्छा, क्योंकि कल रात को ही मैं ब्रह्म संहिता के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन दिया था, तो ठीक है मैं फिर से बता रहा हूँ। सारे वेदों का साल निचोड़ है भगवद गीता और वेद विशाल है, और इसलिए वेद का जो कहना जो है वो समझने में मुश्किल होता है। इट कैन बिकम क्वाइट कंफ्यूजिंग। नाउ वी कैन सी, हम देखते हैं कि जो बाकी जो सारे धर्म हैं वो सारे धर्म का एक या दो ही ग्रंथ है शास्त्र, जैसे मुसलमानों का कुरान, क्रिश्चियनों का बाइबल, यहूदी का थोड़ा, बल्कि हिंदुओं का कंफ्यूजन। इसका कारण यह है, ये श्रीमद् भागवत में ही इसका वर्णन हुआ है, भूरी नी भूरी कर्माणी श्रोतव्यानि। भूरी नी का मतलब विशाल, वेद है विशाल, और भूरी कर्माणी वेदों में बहुत सारे कार्य का पद्धति का। और जब तक का पूरे सारे वेदों का अध्ययन और अनुधावन उपलब्धि नहीं होता है तो वेद का मतलब क्या है समझ में नहीं आता है। तो इसलिए कली युग में और जो युग था वहां लोग बहुत ही मेधावी होते, उनका बुद्धि बहुत ही उन्नत था, उनका बुद्धि या विचार का क्षमता भी बहुत ज्यादा था, वो लगभग सभी श्रुति धर्म होते, मतलब सब वेद नहीं पाठ कर सकते थे, वेद केवल या शास्त्र ग्रंथ का अध्ययन केवल ब्राह्मणों के लिए था। ब्राह्मण का कार्य था, काम था पठन पाठन, वेद के अध्ययन और वेद की शिक्षा प्रदान। अब क्षत्रिय ये था कार्य था, कर्तव्य था रक्षा, राष्ट्र की रक्षा, प्रजाओं की रक्षा, धर्म की रक्षा, ये सारे क्षत्रिय का। तो ब्राह्मण का काम था वेद पठन, वेद के अध्ययन और वेद की शिक्षा करना, कोशिश। तो क्योंकि उन लोगों का वो बहुत मेधावी थे इसलिए उनके लिए सारे वेद का अध्ययन संभव होता था। फिर भी हर ब्राह्मण वेद का अध्ययन नहीं करते थे सारे वेद। आपको पता है ना वेदी, वेदी एक टाइटल है, वेदी का मतलब क्या है? एक वेद जाना, द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी, उसके बड़े हैं चक्रवर्ती, सार्वभौम, लेकिन कलयुग में वेद की जो वाणी है वो समझना असंभव हो गया, इसलिए भगवान भगवत गीता प्रकट की है। सारे वेदों का जो असल उद्देश्य है वो भगवत गीता में प्रकाश हुआ, और वेदों का और बढ़कर जो विचार है उसका वर्णन हुआ है श्रीमद् भागवत। इसलिए इस दो ग्रंथ ही काफी है, केवल हमारे लिए नहीं सबके लिए। इसलिए चैतन्य महाप्रभु इस दो ग्रंथ के आधार पर ही प्रचार किए थे, श्री प्रभुपाद भी दो ग्रंथ के आधार पर ही प्रचार किए, बाकी जो है तो ये दो ग्रंथ को समझने के लिए उसका विश्लेषण, इसे छोड़कर उसको ही समझाने के लिए और सारे ग्रंथों का वर्णन। तो श्रीमद् भागवतम ही है सही एडवांस्ड स्टडी। आपको शायद याद है श्रील प्रभुपाद क्या बोलते थे, प्रिलिमिनरी एजुकेशन भगवत गीता, एडवांस एजुकेशन श्रीमद् भागवत, और अब एडवांस ये तीन ग्रंथ हमारे लिए बहुत ही जरूरी है, महत्वपूर्ण है, और इनमें से जो श्रीमद् भागवतम ही सारे वेदों का असल उद्देश्य वर्णन कर रहे हैं। सारे वेदों का उद्देश्य क्या है, वेदश्च सर्वै अहमेव विद्या। सारे वेदों में क्या समझना है, केवल भगवान को ही समझना है। वेद के बहुत सारे अंग हैं, मुख्य तीन अंग हैं, एक है कर्मकांड, ज्ञान कांड और भक्ति। ये क्रमिक एडवांसमेंट, भौतिक जगत को जो भोग करना चाहते हैं उनके लिए कर्मकांड, जो भौतिक जगत से निकलना चाहते हैं उन्हों के लिए ज्ञान कांड, और भौतिक जगत से निकलने के पश्चात क्या करना होगा वो है भक्ति। मुक्ति ही जीवन का उद्देश्य नहीं है। जैसे एक कैदी है कारागार में, कारागार में दम भोग रहा है, जब तक वो कारागार में है उसका उद्देश्य क्या होता है, कैसे मैं यहां से निकालू, कैसे मैं यहां से निकालू। लेकिन जब निकल आता है तब उसको क्या करना है, उसको खाने पीने के लिए कुछ तो करना होगा, निकलना ही अंतिम उद्देश्य नहीं है। ये रिलेटिव उद्देश्य, हम यहां दंड भोग रहे हैं, कष्ट पा रहे हैं, तो इस परिस्थिति से हमको निकलना है। लेकिन इस परिस्थिति से निकलना ही असल उद्देश्य नहीं है। निकलने के पश्चात क्या है, क्या कर रहा है, और उसका विचार हो रहा है वेदांत में, या जिसको उत्तर मीमांसा कहा गया है, उत्तर मीमांसा फाइनल कंक्लूशन। तो भगवान को भगवान के साथ संपर्क युक्त होना ही जीवन का असल उद्देश्य। लेकिन भगवान के साथ संपर्क जोड़ने के लिए हमको सबसे पहले पहचानना होगा भगवान कौन है। अगर हम भगवान कौन है यही अगर हमें पता नहीं है तो उनके साथ हम प्यार के संपर्क कैसे स्थापित करें। जिसको हम नहीं जानते हैं उसको क्या हम प्यार कर सकते हैं? नहीं। तो अगर भगवान को प्यार करना है, भक्ति का मतलब है प्यार, प्यार, और प्यार प्यार से खत्म नहीं होता है, प्यार का एक्सप्रेशन होता है ना। जैसे जब कोई किसी को प्यार करते हैं तो वो प्यार के कारण जो कुछ करते हैं, कुछ जो प्रकाश, प्यार का प्रकाश कैसे होता है, कार्य की बात है। माँ बच्चे को प्यार करती है और माँ क्या बच्चे के लिए क्या नहीं करना चाहती, सब कुछ करने के लिए तैयार है। ये प्यार का ये स्वाभाविक वृद्धि है। जब हम किसी को प्यार करते हैं उनके लिए हम कुछ करना चाहते हैं, दिखाते हैं, मतलब दिखाने का भी नहीं, ऐसे स्वाभाविक रूप से, हार्दिक रूप से हमारा उनके लिए कुछ करने का, करने का प्रेरणा होता है, करने का इच्छा होता है। तो वैसे भगवान को, भगवान के प्रति हमारे प्यार के नाते जो हम कुछ भगवान के लिए करना चाहते हैं उसका नाम ही है। इसका अंग्रेजी में श्री प्रभुपाद कैसे वर्णन किया, डिवोशनल
सर्विस,
सर्विस, सर्विस। सो तो भगवान को, भगवान के प्रति प्यार की पहला कदम है भगवान कौन है ये पहचान। और प्यार क्या कब होता है, जब आकर्षण होता है। आकर्षण बिना प्यार हो सकता है? सुंदरता प्यार के माध्यम और प्यार के प्रेरणा है। ये प्यार के लिए जो आकर्षण है वो छह प्रकार का होता है। एक है सुंदरता, एक है वैभव, एक है शक्ति, एक है यश और ज्ञान और त्याग। ये छह हमें आकर्षण करते हैं। और क्योंकि कृष्ण सबको आकर्षण करते हैं, क्योंकि कृष्ण के, कृष्ण में ये छह गुण पूर्ण रूप से विराजमान है, इसलिए कृष्ण कृष्ण परम आकर्षण। कर्षति कृष्ण, तो कृष्ण के बारे में भागवतम में पूर्ण रूप से वर्णन हुआ है। भागवतम का 10 अंग है, वो 10 अंग है, मतलब महापुराण का 10 सिम्टम, लक्षण, 10 लक्षण। वो है पहले सृष्टि और सर्ग, मतलब सृष्टि भी सर्ग, सृष्टि के पश्चात सेकेंडरी विशेष सृष्टि। इसका वर्णन ऐसे हो सकता है कि आप एक नया मकान खरीदे हैं, तो मकान खरीदे हैं लेकिन उसके बाद क्या होता है, इंटीरियर डेकोरेशन, जैसे वैसे मकान जैसा है उसमें आप नहीं घुस जाते, उसको सजाते हैं, जो आपका जरूरतें हैं उसको पूरा करते हैं, उसके उसके पश्चात जाते हैं। सो ऐसे ही भौतिक जगत का सृष्टि भगवान श्री विष्णु के माध्यम करते हैं। विष्णु ही सृष्टि करता, सृष्टि करने वाला। और ब्रह्मा जी है इंटीरियर डेकोरेटर, सृष्टि के पश्चात क्या करना है, पहले तो बात है कि सारे जीवों को लाना है। अगर कोई नहीं रहेगा तो क्या हो, तो जीव का सृष्टि, शरीर प्रदान करते हैं। और जो 14 भुवन है इस भौतिक जगत में उसको सजाते हैं और जिम्मेदारी देते हैं विशेष विशेष जीवों, स्वर्ग लोक हैं देवताओं के लिए, इस मर्त्य लोक हैं मनुष्य के लिए, और पाताल लोक हैं राक्षस असुर दैत्य दैत्य और दानव। ये सारे ब्रह्मा जी ये अत्र सर्ग विसर्गश्च स्थानं पोषणं भूतया। स्थान इस ब्रह्मांड की स्थिति कैसी है, 14 भुवन है इसका वर्णन, पोषणं उसके पालन पोषण कैसे हो रहा है सारे जगत में, भूतया सृष्टि करने का जो इच्छा जीव में जीव में जीवों में है वो है स्थान स्थान पोषण। मनमंत्र ईशान पर मनुओं का राज, इसका 14 मनु आते हैं ब्रह्मा के एक दिन, और जब मनु आते हैं उनके साथ साथ देवता भी आते हैं, चेंज होता है, एक मनु चले जाते हैं तो उनके साथ साथ देवताओं ऋषि जो उस मनमंत्र में थे उसको भी छुटकारा मिलता है, ड्यूटी खत्म। तो नया मनु आता है उनका टीम लेके, तो वैसे हर मनु का मनमंत्र होता है स्थिति काल ये राज्य का। ईशान कथा भगवान को जो कार्य कला विभिन्न अवतार से अवतार के रूप में भगवान आगे जो करते कार्य करते हैं उसको ईशानुकथा निरोधा। ये भौतिक जगत के जो आकर्षण है या बंधन है उससे छुटकारा मुक्ति। भौतिक जगत के कार्यकाल आपका खत्म होता है तो मुक्ति, मुक्ति के पश्चात भगवत पद। ये 10 लक्षण है महापुरा निरोध मुक्ति आश्रय। सबको आश्रय कौन है, हमारे सही आश्रय कौन है, तो ये श्रीमद् भागवतम में वेद की वेद वैदिक ज्ञान का पूर्ण वर्णन हुआ। और भागवतम भी विशाल है, 18,000 श्लोक है, 12 स्कंद है और कितने सारे अध्याय हैं और 18,000 श्लोक, तो ये भी समझना मुश्किल है। इसलिए और भी इसका भी संक्षेप में पढ़ना और वो है ब्रह्म संहिता। ये ब्रह्म संहिता समझने में भागवतम का जो मुख्य उद्देश्य है वो सफल हो जाता है, पूर्ण हो जाता है। तो इसलिए हम विचार किए हैं कि ब्रह्म संहिता आता है। अच्छा, भागवतम का मतलब वेदों का उद्देश्य क्या है, भगवान को पहचानना, वेदिष्ट सर्वे अहम एव हि अहमेव वेद्य। वेद्य का मतलब है जानना, सारे वेदों में केवल भगवान को ही पहचानना है, भगवान को ही समझना है और भगवान के साथ ही संपर्क जोड़ना है। तो ऐसे जब हम भागवतम के जो मुख्य उद्देश्य है वो ब्रह्म संहिता में ही सफल और पूर्ण, कैसे इसका शुरुआत होता है पहले श्लोक में भगवान की वर्णन, भगवान कौन है, कृष्ण कौन है, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद सर्व कारण मतलब ईश्वर। ईश्वर का मतलब क्या है? ईश्वर का मतलब सरल रूप से मालिक है, लेकिन एक परमेश्वर, परम ईश्वर। परम ईश्वर के मतलब होता है जिसके बराबर और कोई नहीं है और जिनसे बढ़कर। तो कृष्ण कौन है? ईश्वर परम कृष्ण। और सच्चिदानंद विग्रह, विग्रह का मतलब है उनके जो रूप है, उनके रूप सच्चिद आनंद। भौतिक जगत का निर्माण पंचभूत से होता है। पंचभूत मिट्टी, पानी, अग्नि, वायु और आकाश, और उससे बढ़कर और भी तीन है, मन, बुद्धि, अहंकार। भिन्ना प्रकृति अष्टधा, इस आठ तत्वों से ये भौतिक जगत का निर्माण। लेकिन भगवान का जो शरीर है, भगवान का जो विग्रह है, भगवान का जो रूप है, वो पंचभूत से नहीं बना। भगवान का रूप बना है सच्चिदानंद से। सत का मतलब है अविनाशी, नित्य, हर समय रहेगा, हर समय था, है, जिसका कोई नाश नहीं। तो लेकिन इस भौतिक जगत में सब कुछ विनाशवान है, यह सब कुछ नाशवान है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में सब कुछ अविनाशी है। जैसे भगवान आत्मा के बारे में बोल रहे हैं, अविनाशी उत्तरवृद्धि ये न सर्वनिरा, अविनाशी आत्मा, अविनाशी। चूंकि आत्मा भी उस जगत से आया है, इसलिए आत्मा भी अविनाशी, आत्मा भी चेतन है और आत्मा भी आनंदमय है। सच्चित आनंद का मतलब होता है जिसका कभी नाश नहीं होता है, जो नित्य है, जो पूर्ण चेतन है, सारे ज्ञान है उसमें। भौतिक जगत में हमको क्या करना होता है? ज्ञान संग्रह करना, कलेक्ट, वी हैव टू कलेक्ट आवर नॉलेज। लेकिन आत्मा में सारी ज्ञान, ज्ञान हमारे, और आत्मा आनंद, यह है आत्मा की स्वाभाविक स्थिति। तो कृष्ण का विग्रह कैसे है? सच्चिदानंद विग्रह। और कृष्ण है अनादि आदि, अनादि के भी आदि। जैसे जो कुछ है उसका कुछ आदि है, कारण है। ये टेबल क्यों है? बहुत सारे कारण। लकड़ी था, कारपेंटर था, डिजाइन किया, बनाया और कोई आके इसको खरीदा। तो ऐसे एक के पीछे एक कारण होता है। तो ये कारण ढूंढते 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 जब हम अंत में आते हैं, जिसको कोई कारण नहीं है, वो है भगवान। अनादि आदि गोविंद और सर्व कारण का कारण, वही है सारे कारणों का कारण। तो ऐसे कृष्ण के वर्णन करते हुए इस ब्रह्म संहिता का शुरुआत होता है। यह ब्रह्म संहिता, संहिता का मतलब है कोई महान व्यक्ति, कोई तत्व ज्ञानी व्यक्ति, जैसे ब्रह्मा जी, गर्ग मुनि, सनक ऋषि, उन्होंने जो बताए हैं वो है संहिता। जैसे ब्रह्म संहिता, ब्रह्मा को दिया गया जो संहिता। नारद गर्ग मुनि जो बताया गर्ग संहिता, सनक संहिता, ऐसे सारे संहिताएं। तो ब्रह्मा जी ने जो वर्णन दिए हैं वो है ब्रह्म संहिता। और इसकी जो पांचवा अध्याय जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु जब दक्षिण भारत में भ्रमण कर रहे थे और जब चैतन्य महाप्रभु ने आदिकेश्वर मंदिर में ये ब्रह्म संहिता प्राप्त हुए तो इस पंचम अध्याय को संग्रह करके लाए थे, खुद लिख के ये अपने साथ लाया और जब जगन्नाथपुरी में वापस आया अपने गुरु के पास वैसे इस ब्रह्म संहिता के पंचम अध्याय। तो ये हमें सोचना चाहिए कि चैतन्य महाप्रभु अपने साथ कुछ भी नहीं लेना चाहते, जब दक्षिण भारत में जा रहे थे कुछ भी नहीं लेना चाहते, खुद चला अकेला जाने का तय किए थे। तो नित्यानंद प्रभु ने उनको वैसे समझाया कि अकेला अगर आप जाओगे तो अपना कपड़ा कैसे कौन कैसे कमंडलू कैसे करोगे, पानी के लिए जो ये होता है उसे कमंडलू तो कैसे होगी, क्योंकि तुम्हारे दो हाथ तो चपने में ही मगन रहे। तो तब चैतन्य महाप्रभु एक भक्त को साथ लेने के लिए स्वीकार करें और वो है बहुत छोटा है। जो चैतन्य महाप्रभु कुछ भी अपने साथ लेना नहीं चाहा, स्वयं इस अध्याय को ब्रह्म संहिता के पांचवा अध्याय अपने हाथ से लिख कर जब लाए तो हमें सरल रूप से अनुभव होता है कि इसका महत्व जरूरी है और क्यों है इसका विचार हम आप करेंगे। ब्रह्म संहिता का पहले ही वर्णन हो रहा है कि भगवान का धाम कैसे है, शास्त्र पत्र कमलम गोकुलाख्य महत्पद तद कंजल कंके तत्कर्णिकारण तत् अनंतांश संभव सहस्र पत्र सहस्र का मतलब क्या होता है, हजार पत्र मतलब दल पत्ते, फूल के क्या होता है पखे पत्ते पत्तियां। तो ये हजारों पत्तियां से ये संबंधित है कि ये एक कमल जैसा भगवान के नाम गोकुलाख महत्व भगवान को जो नाम और तत्कर्णिकारम उसके जो कर्णिकार है कमल के बीच में कोरक होता है वो कोरक है भगवान के नाम और तब अनंतांश संभव इसके ये भौतिक जगत का हमें आध्यात्मिक जगत का निर्माण हुआ है अनंत से मतलब बलराम से। अच्छा कर्णिकारं महत्यंत्रं षट्कोणं वज्रकीलकं षडंग षट्पदिस्थानं प्रकृत्या पुरुषेण च प्रेमानंद महानंद सेनावस्थितं निजा ज्योतिरूपेण मनुना कामो विजयः संतोष। ये फिर से इसका वर्णन हुआ है, ये जो भगवान का धाम धाम रूप जो कमल का कर्णिकार है उसका ये कैसी है षड अंग षट प्रतिष्ठान छह कोण में से ये छह मंत्र है षटपदी पद का छह पद है उसका भी वर्णन हुआ। ये मंत्र ही भगवान का स्थान, भगवान का स्थान मंत्र के रूप में विराजमान है। तो हम जब ये मंत्र जपते हैं तो हमको अंत में मतलब हमारे जो हम जब सफलता प्राप्त होते हैं, मंत्र का पूर्णता प्राप्त होते हैं, तब भगवान को दर्शन होता है। कैसे दर्शन होता है? वो मंत्र के बीच में भगवान को दर्शन। और ये मंत्र का ये मंत्र है कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय स्वागत। आप में से ब्राह्मण कौन कौन है? अच्छा, तो ये है गोपाल गायत्री का, ये गोपाल मंत्र ही गोपाल मंत्र का छह क्या बोलते हैं इसको शब्द युक्त ये छह चिन्मय शब्द युक्त षट परिमय मंत्र है। कृष्णाय एक, गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय गोपीजन चार वल्लभाय स्वा छह। तो ऐसे हमें पता चलता है हम जब मंत्र जपते हैं उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए। अच्छा, ये तो मंत्र हुआ भगवान का जो जहां भगवान विराज करते हैं उसका। और हरे कृष्ण महामंत्र में क्या होता है? उस स्थान में जो भगवान विराजमान है उसके वह कौन है? राधा कृष्ण। ये हरे कृष्ण महामंत्र राधा कृष्ण यही द्योतक है, इंगित कर हरे का मतलब श्रीमती राधा, कृष्ण मतलब हरे कृष्ण, राधा कृष्ण राधे कृष्ण संबोधन हे राधे राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे। तो मतलब ये मंत्र के माध्यम ही भगवान, इस मंत्र के द्वारा जो गोपाल मंत्र है उसके द्वारा भगवान के स्थान जो है जहाँ भगवान विराज करते हैं उस स्थान का प्रकाश होता है। और हरे कृष्ण महामंत्र से भगवान श्रीमती राधा रानी के साथ प्रकाश होते हैं। ऐसे भगवत धाम की और भगवान की वर्णन के पश्चात वर्णन हो रहा है कैसे ब्रह्मा जी इस जगत में आए थे। ये बड़े सारे वर्णन हुआ है उसमें हम नहीं जा रहे थे। जो भगवान के नाभि कमल से ब्रह्मा जी का उत्पत्ति हुआ, ब्रह्मा जी का जन्म हुआ, ब्रह्मा जी स्वयं भगवान से आए थे, ये तो सबको पता है ब्रह्मा जी का आविर्भाव हुआ। तो इस जगत में जो आते हैं वो सब वो अज्ञान में रहते हैं। जब बच्चा का जन्म होता है उसको पता रहता है कुछ ज्ञान रहता है नहीं, लेकिन धीरे धीरे वो ज्ञान प्राप्त होता है। वैसे ही ब्रह्मा जी जब आए थे यद्यपि उनका चेतना फुल्ली डेवलप था लेकिन याद नहीं कहां से आए हैं कौन है, इसलिए ब्रह्मा जी ने सोचने लगा, देखा कि बैठे हुए ऐसे कमल के ऊपर और चारों ओर एक सागर और कोई नहीं। तो ब्रह्मा जी ने सोचा अगर मैं इस कमल के नाल से अगर नीचे चले जाएंगे तो हमको पता चलेगा। लेकिन हजारों साल तक नीचे उतरने के पश्चात भी ब्रह्मा जी को अंत नहीं। तब ब्रह्मा जी फिर से आकर इसके ऊपर बैठे, कमल के ऊपर बैठकर सोचने लगे आप क्या करोगे। इतने सारे कोशिश किया नीचे उतरने का, और मैं सोचा था कि अगर मैं नीचे चले जाएंगे तो पता चलेगा मैं कहां से आया हूं, तब मुझे शायद पता चलेगा मैं कौन। और इसका वर्णन ऐसे हुआ कि जब तभी ब्रह्मा जी भगवान के बहुत ही नजदीक आ गए थे, भगवान के नाभि से उनका उत्पत्ति हुआ है और भगवान के नाभि के बहुत नजदीक ही आ गए थे, लेकिन भगवान को दर्शन नहीं कर पाए। इसका मतलब क्या होता है? हमारे भौतिक इंद्रिया के द्वारा हम भगवान को दर्शन नहीं कर सकते। भौतिक भगवान भौतिक इंद्रिय के परे, भौतिक इंद्रिया के द्वारा, भौतिक आंखों के द्वारा हम केवल इस भौतिक जगत का वस्तु ही दर्शन कर सकते हैं, है ना? और फिर भी भौतिक जगत का भी सब कुछ दर्शन नहीं होता। मिट्टी हम दर्शन कर सकते हैं, सॉलिड, पानी को भी दर्शन होता है, अग्नि का भी दर्शन होता है, अग्नि तक दर्शन होता है, बल्कि अग्नि के पश्चात क्या है? वायु, वायु को दर्शन कर सकते हैं। फिर भी जब वायु बाजी है तो हम स्पर्श से अनुभव कर सकते हैं, और उसके पड़े जो आकाश जो है उसको हम कोई किसी भी इंद्रिय के द्वारा उसको उपलब्धि नहीं कर सकते। तो इंद्रिया के परे, मन के परे जो आत्मा है उसको हम कैसे दर्शन? तो भगवान के दर्शन इस भौतिक आंखों के द्वारा संभव नहीं है। लेकिन जब भगवान यहां आकर अपने लीला विलास करते हैं तब हम हमारे ये भौतिक आंखों के द्वारा भगवान को दर्शन कर सकते। इसलिए लीला को प्रकट लीला कहा, ताकि वो लीला के द्वारा हम भगवान को दर्शन कर सकते। भगवान को इस समय भगवान जब आते हैं तब हम उनको दर्शन कर सकते, लेकिन जब भगवान अपना लीला उतार लेते हैं, समाप्त कर देते हैं, तब और उनको दर्शन करने का संभावना नहीं है। तब श्रवण की माध्यम भगवान को दर्शन करते हैं। जैसे जब तभी हम लोग अब भगवान के दर्शन नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब हम श्रवण कीर्तन कर रहे हैं, मैं बोल रहा हूं आप सुन रहे हैं, तो भगवान को दर्शन हो रहा है ना? तो ये और एक रूप से भगवान को दर्शन कर सकते। और भगवान के असल दर्शन कैसे होते हैं? प्रेमांजन छुरी का भक्ति की रोशन। भगवान को दर्शन केवल प्रेम की माध्यम में संभव होता है, प्यार की माध्यम संभव होता है। जिसके जिसको जिसको दिल में प्यार नहीं है वो भगवान के दर्शन नहीं कर सकता। जैसे दुर्योधन आंखों से देख रहे भगवान को, लेकिन भगवान को भगवान भगवान को भगवान के रूप में नहीं देखते, एक मामूली इंसान के रूप में देखते। मतलब प्यार के द्वारा ही हम केवल भगवान को दर्शन कर सकते हैं। अगर भगवान हमारे सामने नहीं है, जब तक भी हम आंखों के द्वारा भगवान को दर्शन नहीं कर सकते, लेकिन दिल में अगर प्यार है तो भगवान को हम दर्शन जरूर कर सकते। जैसे भगवान तो प्रकाश हुए हैं, प्रकट हुए हैं, दर्शन हो रहे हैं, लगता है कि ये मेटल है, ज्यादा से ज्यादा अष्ट धातु से बना है, नहीं तो केवल ब्रास्ट होता है। लेकिन जब प्यार होता तब क्या है? इस विषय में एक बहुत सुंदर दृष्टांत है। एक मां को बच्चा खो गया और मां बच्चा को तस्वीर देख रही है। मां का मनोभाव उस समय कैसा? रोने लगे। जबकि बच्चा नहीं है सामने, लेकिन उस तस्वीर की माध्यम में बच्ची को दर्शन। वैसे ही प्यार के नाते भगवान को दर्शन होता। अगर प्यार नहीं है तो दर्शन नहीं होता। वो हम पत्थर देखेंगे या लकड़ी देखेंगे या और कुछ भगवान को नहीं। इसलिए भगवान को अगर दर्शन करना है, चाहे भगवान हमारे सामने हो या ना, अगर दिल में हमारा प्यार है तो भगवान को दर्शन जरूर करो। इसलिए उस प्रेम को ही अपनाना चाहिए, प्राप्त होना चाहिए। तो ब्रह्मा जी भगवान को जब तक भी बहुत ही नजदीक आ गए थे, गर्भदोष विष्णु नाभि के, मतलब नाभि का अगर दर्शन हुआ तो नाभि के नजदीक आ गया तो व्यक्ति को भी दर्शन जरूर हो, लेकिन दर्शन नहीं कर पाए। तो ब्रह्मा जी फिर से आकर वो कमल के ऊपर बैठे और बैठने के पश्चात ब्रह्मा जी ने सोचने लगा कि आकर तब सुना कि सागर के लहरी का जो संघर्ष हो रहा था उसके कारण एक शब्द हो रहा तपा तपा। तो उस शब्द की माध्यम भगवान ब्रह्मा जी को प्रेरणा दिया, तपा अंतर्मुखी हो, चेतना को अंतर्मुखी करो। ऐसे चेतना तो बहिर्मुखी होकर देखा कुछ भी पता नहीं चला, चलो अंतर्मुखी। तो वैसे जब ब्रह्मा जी ने चेतना को अंतर्मुखी किया तब एक शब्द सुनाई दिया। असल में वो शब्द क्या था? वो शब्द था भगवान के बांसुरी के शब्द, जो ब्रह्मा जी के पास ओम के रूप से प्रकाश हो। तो उसने अपना ध्यान लगाया तो उस शब्द से गायत्री का प्रकाश हो, और उस गायत्री को ध्यान करने से वेद का प्रकाश हो। तो इसलिए गायत्री को वेद माता कहा जाता है, वेद की मां है। और तब ब्रह्मा जी के इस ध्यान की माध्यम भगवान को दर्शन हुआ। और जब भगवान को दर्शन होता है तो कैसा दर्शन होता है? जब भी लगता है ब्रह्मा जी ने अंतर्मुखी हुआ, अंतर्मुखी की अपने चेतना को ब्रह्मा जी ने उस समय भगवान को दर्शन किया, तो वो दर्शन जद्यपि हृदय में लगता है हृदय में हुआ, लेकिन उस दर्शन भगवत धाम से अभिन्न दिया। ब्रह्मा जी भगवान को धाम दर्शन किया, उसका ही वर्णन ब्रह्म संहिता के 29 से लेकर 65 पहले श्लोक है, चिंतामणि प्रकर सदन सु कल्प वृक्ष लक्षा प्रीतेषु सुरभिरहम् गंधर्व कोटि कमनीय विशेष शोभम गोविंदम आदि पुरुषम तम अच्छा लक्ष्मी चिंतामणि चिंतामणि प्रकर कल्प वृक्ष लक्षाभृतेषु सुरभिरभिपाल लक्ष्मी सहस्र सत संभ्रम से गोविंद आदि पुरुष ये श्लोक इसको कंठस्थ हो गया है वेरी गुड दैट साइड इज हेवी दिस साइड इज हेवी मैं भी आप शर्मा के शर्मा रहे ओके तो हम इसको रिसाइट करते हैं रिसाइट का हिंदी क्या होता है उच्चारण ये आवृत्ति शब्द आता है तो हम आवृत्ति करते हैं चिंतामणि प्रकर्ष लक्षाभृतेषु सुरभिरभिपालयन्तम् लक्ष्मीसहस्रशतसम्भ्रमसेवमानम् गोविन्दमादिपुरुषम् अहम् भजामि गोविन्दामणि प्रकर्षसुकल्पवृक्ष लक्षाभृतेषु सुरभिरभिपालयन्तम् अब ना देखिए आंखें बंद आंखें बंद भगवान के धाम ब्रह्मा जी गए हैं ब्रह्मा जी चले गए वृंदावन वो कमल से नहीं है ब्रह्मा जी अब चले गए हैं वृंदावन वहां क्या देख रहे हैं वो जो वो स्थान जो है वो चिंतामणि से बना हुआ है चिंतामणि क्या है चिंतामणि का एक प्रकाश इस भौतिक जगत में होता है ये चिंतामणि आध्यात्मिक वस्तु बल्कि इस भौतिक जगत में भी चिंतामणि का प्रकाश हुआ है थोड़ा बहुत जैसे सुरभि गाय का प्रकाश हुआ है यहां नंदिनी के रूप में तो वैसे ही चिंतामणि का प्रकाश यहां भी हुआ है कैसे उस चिंतामणि के जिस चिंतामणि को यहां परशमणि कहा है परशमणि तो उसका स्पर्श होने से सब कुछ सोना बन जाता है अगर हम यहां लगा देते हैं तो सारे सोना बन जाते हैं लोग चाहते हैं अगर मिल जाए तो बहुत अच्छा हो तो लेकिन वृंदावन के सारे जगह चिंतामणि से बना प्रकट सदमसु वहां वहां के जितने सारे मकान वगैरह जो है वो सब भी चिंतामणि से बना और चिंतामणि प्रकट सदमसु और वृंदावन है वन वन में क्या होता है वृक्ष होता है पेय होता है वो सारे पेय क्या है कल्प वृक्ष एक कल्प वृक्ष के पास अगर हम जो कुछ मांगते हैं मिल जाता है, जिसे कल्प वृक्ष कहते हैं। अब देखो वहां के सारे वन में जितने सारे वृक्ष हैं सब है लक्षावृति, और सुरभी अभी पाल है। वहां के जितने सारे गाय को भगवान पालपोष पालन कर रहे हैं, पाल रहे हैं, वो सब है सुरभी गाय। तो ये सुरभी गाय के बारे में कुछ बोलेंगे, सुनना चाहते हो? मैं जैसे बोला सुरभि का एक बच्ची इस भौतिक जगत में, तो वो है, वो उसका नाम है नंदिनी। नंदिनी वशिष्ठ मुनि के पास, वशिष्ठ मुनि के पास थी। तो एक दिन एक राजा जिनका नाम था विश्वामित्र, वो वन में निगाह करते हुए, शिकार शिकार करते हुए थक अपने सारे सैन्य समूह को लेकर वशिष्ठ के आश्रम में आया। आकर तो वशिष्ठ ने बोला आप सब जाके नहा कर आइए पानी के लिए नदी में, तो आपको खाने के लिए कुछ व्यवस्था जरूर करें। तो राजा विश्वामित्र ने सोचा ये जंगल के अंदर क्या करेगा, होगा शायद थोड़ा सा फल वगैरह कुछ मिलेगा। बल्कि नहाकर जब आया तो देखा कि ऐसा एक आयोजन हुआ है जो अपना प्रासाद में भी वो कल्पना भी नहीं कर सकता। थाली सोने से बना हुआ और हीरे हीरे आदि जहरों से उसका डेकोरेशन, कटोरे सोने का, ग्लास सोने का, और खाना कितने सारे खाना, राजा होते हुए उसको भी पता भी नहीं था इतने सुंदर खाना और कितने तरीका था। तो तत्पश्चात विश्वामित्र ने आप पूछा ऐसे आयोजन आप कैसे किया, ये तो मेरा भी कल्पना के अतीत है, तो कैसे ये आयोजन किए? तो वशिष्ठ मुनि ने नंदिनी को दिखाया, ये है मेरा गाय नंदिनी, ये है सुरभि की कन्या, और उसके पास हम जो कुछ चाहते हैं जो कुछ मांगते हैं। तो आयोजन मैंने किया नंदिनी के लिए। तो विश्वामित्र बोला तो एक गाय में आप हमको दे दीजिए, आपको तो आप तो यहाँ रहते हैं, आपको तो जरूरत कुछ भी नहीं है, तो मेरा तो लाले होने के नाते कितने सारे ये हम रहते हैं, ये हमें अगर मिल जाता है तो बहुत अच्छा होगा, आप दे दीजिए, मैं आपको 1,000 गाय दे दूंगा। वशिष्ठ ने बोला नहीं संभव नहीं है, ठीक है 10,000, 1,00,000। वशिष्ठ ने बोला ये मेरा बेटी जैसी, इसको मैं दे दूंगा। विश्वामित्र ने बहुत क्रोधित हो गए, देखो ये तो लगता है ऋषि है, त्यागी है, देखो इसको मनुष्य अपना गाय देना नहीं चाहते। चलो वो सैनिकों को बोला जबरदस्त इस गाय को ले जाओ। तो तब सैनिकों ने गाय को बांधा नंदिनी को खींचकर, रोते हुए नंदिनी ने बताया वशिष्ठ आपके सामने हम पर ऐसा अत्याचार हो रहा है, आप कुछ नहीं करेंगे। वशिष्ठ बोला मैं ब्राह्मण हूं, हिंसात्मक कार्य मेरे लिए नहीं, लेकिन अगर तुम चाहो तो तुम आत्मरक्षा कर सकते, बस तो नंदिनी ने एक ऐसा रेजिमेंट बनाया सैनिकों को, वो विश्वामित्र को सैनिकों को हराकर भगा दिया। तो देखो ये है सुंदरी के, सुंदरी के पास अच्छा काल्पन वृक्ष के बारे में सुनोगे। एक व्यक्ति एक क्या बोलते हैं कटर अच्छा जो लकड़ी अच्छा कटुरिया में हो रहा है कटुरिया जब जो भी हो तो वो जंगल में लकड़ी काटने को गए, बल्कि वो जो एक पेड़ को काट रहा था वो था एक कल्प वृक्ष के बाजू में। तो काटते काटते उसका जो कुठार का जो हैंडल है वो टूट गया। तो सोच लेगा टूट गया इसको हम क्या करेंगे, अच्छा होता कभी मिल जाता नया कुठार मिलता था, बच्चर से एक नया कुठार आ गया। तो काटने लगा थक गया, सोचा खुद है काटने में ये वृक्ष कितना बड़ा है, तो अगर ऐसे ही काट जाता था तो बहुत अच्छा। तो जैसे वो कुठार उसके हाथ से निकल कर पेड़ को काटना शुरू किया, पेड़ काट दिया। वो सोचा अगर ये लकड़ी टुकड़ा हो जाता था तो अच्छा होता, बस वो भी कर दिया। ये लकड़ी बांधने के लिए अगर कुछ होता बहुत अच्छा होता, हो गया लकड़ी बांध लिया, जो लकड़ी सब बांध लिया, बहुत भूख भी बहुत लगा है, कुछ अगर खाना मिल जाता तो अच्छा होता। तुम्हारे छत से खाना भी आ गया, तो खाने के पश्चात उसको बहुत नींद आया और सोचने लगा अगर मैं सो गया अगर एक शेर आता तो तुरंत ही वह एक शेर आ गया। तो ये है कल्प वृक्ष की महिमा। इसलिए इस भौतिक जगत में कल्प वृक्ष नहीं है, क्योंकि हम अगर उल्टा सीधा कुछ मान लेते हैं तो बहुत मुश्किल होगा। तो वैसे वृंदावन कैसी है, कल्प वृक्ष से भरा हुआ है। भगवान श्री कृष्ण ने जो गाय चढ़ाते हैं अपने दोस्तों के लेकर, वो सब है सुरभि गाय। और वहां जो गोपियां जो है जिसके साथ भगवान लीला विलास कर रहे हैं वो सब है लक्ष्मी, लक्ष्मी सहस्र संभ्रम, हजारों लक्ष्मियां संभ्रम के साथ भगवान को सेवा कर रहे हैं, संभ्रम से। तत्पश्चात ब्रह्मा जी भगवान को देख रहे हैं, वेणुं कनकं अरविंद दलायताश बढ़ावताम समसिताम सुंदर कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम गोविंद महावीर कृष्ण। भगवान क्या कर रहे हैं, भगवान तो देख रहे हैं। वेणुम भगवान बांसुरी बजा रहे, वेणुम जो वेणु बजाने में दक्ष है, कमल की पंखुड़ियां जैसे जिनके प्रफुल्ल नेत्र हैं, जिनका मस्तक मोर पंख से आभूषित है, जिनके अंग नीले बादलों जैसे सुंदर हैं, और जिनकी विशेष शोभा करोड़ों काम देवों को भाती है, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजना करता। भगवान को दर्शन कैसे कर रहे हैं, सुंदर रूप से बांसुरी बजा रहे हैं, बेनुम का नंदन, भगवान की आंखें कैसे हैं, अरविंद दलाय अरविंद का मतलब है कमल, अरविंद कमल जैसे, कमल जैसे कमल की पंखुड़िया जैसे उनके प्रफुल्ल नेत्र है। और बरहावता उनके सिर पर मयूर मोर पंख है, मोर पंख से उनके मस्तक आभूषित है, जिनके अंग नील बादलों जैसे सुंदर है और जिनकी विशेष शोभा करोड़ों काम देवों को भी लुभाती है, उन आदि गुरु भगवान कविंद का मैं भजन करता हूं। तो हम ऐसा गाएंगे, वेणु कदंतम अरविंद दलायताक्ष वरहावतम समसितांबुद सुंदरांगम कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम गोविंद मादि पुरुषम से शोभित, प्रणय प्रेम की केली कला लीलाओं में विलासम जो सदैव मग्न रहते हैं, श्यामम श्याम सुंदर त्रिभंग तीन स्थानों पर मुड़े हुए ललितम सौभ्य सौम्य नियत नित्य प्रकाशम प्रकाशित गोविंद गोविंद को आदि पुरुष तमहं भजामि, मैं उनको भजना करता हूं जिनके गले में चंद्रक से शोभित बनमाला बनमाला झूम रही है, जिनके दोनों हाथ बंसी तथा रत्नजड़ित बाजूबंदों से सुशोभित हैं, जो सदैव प्रेम लीला में लीलाओं में मग्न रहते हैं, जिनका ललित त्रिभंग श्याम सुंदर रूप नित्य प्रकाशमान है, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजना करता हूं। आलोलो चंद्र के लसत बनमाल वंशी, चंद्रहार से भगवान के गले में और मनमाला से शोभित है उनके गलदेश, रत्नांगन सारे शरीर रत्न से विभूषित है। प्रणय के लिए कला विनाशन और भगवान प्रणय प्रेम लीला विनाश कर रहे हैं। श्यामं त्रिभंग ललितं नियत प्रकाशं, उनके जो श्याम सुंदर रूप प्रकाशित है, गोविंद गोविंद को मैं, आदि गुरु गोविंद को मैं, इसको भी हम पढ़ लेते हैं।
आदूर चंद्र पर सत्वगमाय वंशी रत्नागरं प्रणय केलि कला विलासम् श्यामं त्रिभंग ललितं नियत प्रकाशं गोविंदमादि पुरुषं।